हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आयु की तबीयत खराब होने की वजह से वो ऑफिस नहीं आई थी। आरव ने इस बात को नॉर्मली लिया, लेकिन जब युवानी ने उसे बताया कि मंथन भी आज ऑफिस नहीं आया तो आरव का चेहरा उतर गया था। उसे लगा मंथन आयु की देखभाल करने के चक्कर में नहीं आया। आरव ने खुद को नॉर्मल किया और बेपरवाह अंदाज में कहा, हाँ, आयु की देखभाल करने के लिए छुट्टी ली होगी। नहीं, मंथन सर भी बीमार है और सर, आप भी मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, युवानी ने आरव का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा। वो थका हुआ लग रहा था। आरव ने सिर हिलाकर लो वॉइस में कहा, हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द कर रहा है। तुम जाओ और किसी को अंदर मत आने देना, खासकर माही को, युवानी जाते हुए बोली। ओके सर। जाने से पहले युवानी ने एक नज़र आरव के चेहरे की तरफ देखा। वो बहुत शांत नज़र आ रहा था। ऊपर से उसने किसी को गुस्सा भी नहीं किया था। युवानी दूसरी तरफ पलटी और मन ही मन कहा, ये आरव सर को क्या हो गया? आज तो उन्होंने गुस्सा भी नहीं किया और इतने अच्छे से बात भी की। लगता है वो सच में बीमार है। भगवान जल्दी से इन्हें ठीक कर दे। युवानी को वहीं रुका हुआ देखकर आरव ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने सकपकाकर जवाब दिया। आरव ने सिर हिलाकर सख्त आवाज में कहा, देन गो, यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? युवानी जल्दी से वहाँ से निकल गई। वहीं जब माहिरा आयु से मिलने गई तो उसे पता चला कि आयु और मंथन दोनों ही 3 दिन की छुट्टी पर हैं। आयु ऑफिस नहीं आई थी, ये सुनकर उसे मन ही मन बहुत सुकून मिला। माहिरा ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, आरव के करीब जाने का यही मौका है। अगर वो कुछ दिन आयु से दूर रहेगा तो उसका मूड ठीक हो जाएगा। आरव उस आयु को देखकर बहुत चिढ़ जाता है। जो भी हो, अब आरव का मूड ठीक रहेगा तो मैं उससे हमारी शादी के बारे में बात कर सकती हूँ। माहिरा ने आरव को मनाने का सोचा। ये सोचकर वो सीधा उसके कैबिन में पहुंची, लेकिन ऊपर जाने पर युवानी ने उसे अंदर जाने से रोक लिया था। ये आरव का ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि उसके कैबिन में किसी को ना आने दिया जाए। तुम्हें तो मैं देख लूंगी, माहिरा गुस्से में चीड़ कर बोली और फिर अपने वर्किंग स्पेस में चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ गौरवी जी को आयु के बीमार होने की न्यूज मिल चुकी थी। वो आयु से मिलने के लिए मंथन के घर जा रही थी, तो वहीं मंथन के घर पर दोपहर के करीब आयु की नींद टूटी। उसने खुद का टेम्परेचर चेक किया तो वो नॉर्मल था। एक बार मंथन को भी चेक कर लेती हूँ, आयु ने खुद से कहा और फिर मंथन के कमरे में गई। मंथन अभी भी सो रहा था। नींद में ही आयु ने उसका टेम्परेचर चेक किया। बुखार तो नहीं है, आयु ने कहा। फिर ये अभी तक क्यों सो रहा है? शायद पूरी रात जागने की वजह से थक गया होगा। मैं इसके लिए सूप और कुछ हल्का खाना बना देती हूँ, बाद में जगा दूंगी। अगर ये उठ गया तो मुझे कुछ नहीं करने देगा। आयु खुद से बातें करती हुई रसोई में आई। वहाँ उसने मंथन और खुद के लिए सूप और नूडल्स बनाए थे। चलो, बन गया, आयु ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। अब मंथन को जगा देती हूँ, अभी तक कुछ नहीं खाया उसने भी। आयु को इसी तरह सिंपल लाइफ बिताना पसंद था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वो अब छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अपने और मंथन के लिए खाना बनाने के बाद आयु मंथन को जगाने के लिए उसके कमरे में आई, लेकिन मंथन वहाँ पर नहीं था। मंथन, मंथन कहाँ हो तुम? आयु चिल्लाई। आयु, नहा रहा था यार, मंथन ने बाथरूम के अंदर से कहा। मैं उठा तो तुम रसोई में लगी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं नहा लेता हूँ। और ये बात दीदी को पता चली तो पता है ना कितना गुस्सा करेगी वो, आयु ने कहा। तुम्हें बुखार था और तुम ठंडे पानी से नहा रहे थे, नॉट गुड मंथन। आने दो दीदी को, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। अच्छा, मेरी शिकायत लगाओगी? मंथन ने बाहर आकर कहा। और खुद मैडम क्या कर रही थी किचन में? बीमार होने पर नूडल्स कौन बनाकर खाता है आयु? तुम्हें कैसे पता चला? आयु ने आंखें बड़ी करके पूछा। उठते ही तुम्हें देखने के लिए गया था, तुम खुश लग रही थी इसीलिए रोका। तुम्हारा जो दिल करे वो करो, इतने दिनों बाद तुम यहाँ वापस आई हो। वैसे थैंक्स आयु, जो तुमने कुछ खाने के लिए बना लिया। यू डोंट नो, पर मुझे बहुत भूख लगी थी, रात को भी कुछ नहीं खाया था। पता था मुझे, तभी ये बनाई, आयु ने जवाब दिया। वो किचन में खाना लाने जा ही रही थी कि मंथन ने उसे अपने करीब खींच लिया। पहली बार आयु को मंथन का टच अजीब लगा। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, छोड़ो ना मंथन, टिया आ जाएगी। ठीक है, पर तुम रहने दो, खाना मैं लगाता हूँ, मंथन बोला। तभी उसे अचानक टिया की याद आई तो उसने तुरंत पूछा, टिया कहाँ है, घर पर दिख नहीं रही। टिया पास वाले पारस के घर पर है, तुम खाना सर्व करो, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे, आयु बोली और बाहर जाने लगी। जल्दी आना, मंथन ने तेज आवाज में चिल्ला कर कहा। वहाँ खड़े होकर मेहता आंटी की बहुओं की बहस एंजॉय करने मत लग जाना, वो आयु के वापस आने से काफी खुश था। आयु ने हंसते हुए जवाब में कहा, क्या करूं, वो दोनों जब झगड़ती हैं तो कोई भी खड़ा होकर एंजॉय करने लगे। एंड डोंट वरी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आयु टिया को लेने के लिए उनके पड़ोस से मेहताज के घर जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो पास वाली मेहता आंटी टिया के साथ खड़ी थी। मिसेज मेहता ने आयु को घूर कर देखा और कहा, तुम अभी भी यहीं रहती हो, मैंने तुम्हारा वीडियो देखा था, तुम्हारी तो उस आरव खुराना से शादी हुई थी ना, फिर शादी के बाद एक गैर मर्द के साथ क्या कर रही हो, साक्षी भी बाहर है। आयु को इसी बात का डर था, लोगों की नजरों में वो आरव की पत्नी थी, ऐसे में वो मंथन के साथ उसके घर रहने आई तो सब उसे ही जज करने वाले थे। ऐसा भी नहीं था, आयु खुद को घर में बंद करके रख सकती थी। आयु ने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा, अब इनके सवालों का भी जवाब दो, सब उस आरव की वजह से हो रहा है। आयु ने टिया का हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगी। तभी पीछे से मिसेज मेहता ने उसे सुनाते हुए कहा, इस जैसी लड़की से कोई लड़का शादी कर भी कैसे सकता है, जो शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। आरव अच्छे परिवार है, उन्हें कौन नहीं जानता, जरूर उसने इसकी हरकतें देखकर इसे घर से निकाल दिया होगा। आयु का मन किया कि वो मिसेज मेहता का गला दबा दे, पर उसने कुछ नहीं कहा और अंदर आ जाने लगी। उनके घर के अंदर कदम रखते ही टिया ने आयु को रोकते हुए कहा, मामी आपको बुरा लगा ना, मैं मामू को बोलती हूँ, वो जाकर मेहता आंटी की खबर लेंगे। कोई बात नहीं, हम इग्नोर करते हैं, तुम मंथन और साक्षी दी से कुछ नहीं कहोगी, आयु बोली और अपना हाथ टिया के सामने किया। पर मामी, टिया उसे किसी तरह का कोई प्रॉमिस नहीं करता चाहती थी, पर आयु ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ पर रख दिया। आयु टिया के साथ अंदर पहुंची तो मंथन उनका वेट कर रही थी। आयु उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। वे लोग खाना खा रहे थे। उधर दूसरी तरफ गौरवी जी आयु से मिलने मंथन के घर पहुँच चुकी थी। अचानक उनके घर की डोरबेल बजी। इस टाइम पर कौन आया होगा, आयु ने हैरानी से पूछा। आयु, दोपहर के 1 बज रहे हैं, ना कि रात के, तो कोई भी आ सकता है, मंथन ने सिर हिलाकर कहा। साक्षी दी आई होगी, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ, आप दोनों बैठे रहो, टिया ने कहा। उन दोनों के कुछ कहने से पहले टिया दौड़कर दरवाजा खोलने चली गई। टिया, बच्चा आराम से, गिर जाओगी, आयु ने पीछे से तेज आवाज में कहा। बहुत दिन बाद तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाया है, मंथन ने आयु को खिलाते हुए कहा। मंथन, टिया है यार, आयु ने कहा, मैं खा लूंगी खुद से, और वैसे भी पता नहीं बाहर कौन आया होगा, साक्षी दी ही होगी, मंथन ने बेपरवाही से कहा।
उसके मना करने पर भी मंथन आयु को अपने हाथ से खिला रहा था कि तभी गौरवी जी टिया के साथ अंदर आई। आयु और मंथन उन्हें देखकर थोड़ा सकपता गए। प्रणाम दादी, सॉरी वो, आयु ने जल्दी से दादी के पैर छूकर कहा। आयु काफी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी क्योंकि वो मंथन के क्लोज थी थोड़ा। तुम ऐसे एम्बैरस फील मत करो, उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर गौरवी जी ने कहा। तुम और मंथन पहले से ही साथ थे, आरव भी तो अभी माहिरा के साथ ही रहता है, जब मैं उसे ही मना नहीं कर पाई तो बच्चे तुम्हें कैसे कुछ कह सकती हूँ। आइए ना दादी, बैठिए, मंथन ने माहौल को हल्का करते हुए कहा। नहीं बेटा, मैं बस इधर से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। रात को आरव ने बताया कि आयु की तबीयत सही नहीं है, फिर सुबह युवानी से बात हुई तो उसने बताया कि मंथन भी बीमार है, तो बस बच्चों तुम दोनों की तबीयत पूछने आई थी। कैसे हो दोनों, गौरवी ने कहा। हम ठीक हैं दादी, आप कैसे हो, आयु बोली। मैं भी अच्छी हूँ, गौरवी जी ने कहा। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, ऑफिस भी जाना है, आरव को कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन चाहिए थे। जी, आयु ने धीमी आवाज में कहा। गौरवी जी वहाँ से बहाना बनाकर निकल गई। ना चाहते हुए भी उनकी आंखें नम हो गईं जब उसने आयु और मंथन को एक साथ देखा। आयु ने उनके बनते बिगड़ते भाव देख लिए थे। उनके जाते ही आयु ने उदास होकर कहा, मंथन आई थिंक दादी को बहुत बुरा लगा है हमें ऐसे एक साथ देखकर, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, शायद वक्त के साथ वो भी समझ जाए कि तुम और आरव सर एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, मंथन ने जवाब दिया। बौरवी जी को उदास देखकर आयु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आयु ने मायूसी से कहा, मंथन, दादी बहुत अच्छी हैं, वो यही चाहती हैं कि मैं आरफ के साथ रहूं, लेकिन ट्रस्ट मी, आरफ के साथ लाइफ बिताने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। वो बहुत अजीब है, उसे किसी से प्यार नहीं है, ना ही उसे किसी के इमोशन से फर्क पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि वो माहिरा से भी प्यार करता होगा। पहले मुझे भी लगता है, लेकिन जिस तरह वो उसे सपोर्ट करता है, तब यही लगता है आरव माहिरा से प्यार करता है तभी उसके साथ है। फिर दूसरे ही पल ये लगता है कि अगर आरव सर माहिरा से प्यार नहीं करते तो वो उसके साथ क्यों है, मंथन ने उलझन भरे स्वर में कहा। एग्जैक्टली, मेरे माइंड में भी यही सब सवाल आते रहते हैं। और आरव अपनी मॉम डैड से इतना चिढ़ता क्यों है? जब भी उनकी बात करो तो गुस्सा हो जाता है। मैंने दादी से पूछा तो उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है क्या? आयु ने पूछा। उसे लगा मंथन को इस बारे में कुछ पता होगा। मैं नहीं जानता, शायद साक्षी दीदी को इस बारे में कुछ पता हो, वो आए तब उनसे पूछ लेना। चलो अब छोड़ो ये सब, अगर तुम्हारा खाना हो गया है तो मेडिसिन लेकर आराम करो, मैं थोड़ा काम देख लेता हूँ, मंथन ने जवाब दिया। उसे आरफ के बारे में डिस्कशन करने का कोई शौक नहीं था। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और अंदर चली गई। वैसे भी आरफ के बारे में सोचकर उसका सिर दर्द होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ आयु से मिलने के बाद गौरवी जी आरफ के पास डिजायर्स के ऑफिस आई, लेकिन आरफ मीटिंग में बिजी होने के कारण वो उसके केबिन में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। गौरवी जी ने अपने मन में कहा, काश आयु की लाइफ में मंथन से पहले आरव आया होता, लेकिन अब क्या हो सकता है। आयु भी आज मंथन के साथ कितनी खुश थी, बीमार होकर भी उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या मेरा और तारा जी का आरव और आयु के रिश्ते को एक मौका देने का आइडिया सही है? अगर आयु मंथन के साथ खुश है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। लेकिन आरव भी तो कहीं ना कहीं आयु से प्यार करने लगा है, भले ही वो कहे ना। कई बार इंसान जो बातें होश में रहकर भी नहीं बोल पाता वो मदहोश होकर बोल देता है। आरव दिल से ज्यादा दिमाग के फैसलों में यकीन करता है, और उसका ये कहना कि आयु उसके दिमाग में बस गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उसे चाहने लगा है। पर पता नहीं कौन सी बंदिशें हैं जो उसे ये सब कहने से रोक रही है। कहीं माहिरा तो उसे फोर्स नहीं कर रही? मन तो करता है उस चुड़ैल का गला दबा दूं। बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह चिपक सी गई है मेरे बच्चे के। गौरवी जी अपनी उधेड़ बुन में खोई हुई थी कि तभी आरव मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में आया। दादी को वहाँ देखकर आरव समझ गया कि जरूर वो कल रात के बारे में बात करने आई होंगी। मुझे पता था कि कल रात के ड्रामे के बाद आप यहाँ जरूर आएंगी दादी, और ये भी पता है कि आप मुझे डांटेंगे भी, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। अंदर आकर अपनी चेयर पर बैठते हुए आरव आगे बोला, चलिए बोलिए, आपको जो भी बोलना है, लेकिन एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने कल रात को किससे क्या कहा था। तुम्हें याद नहीं होगा खड़ूस खुराना, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। आप बैठिए तो सही, आपको भी सब कुछ याद दिला दिया जाएगा, गौरवी जी ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। उनका चेहरा देखकर आरव को समझ आ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो सिर हिलाकर बोला, दादी प्लीज ऐसे मत देखिए, आपको पता है ना कि इंसान नशे में कुछ भी बोल जाता है। हाँ, तुम्हारी इस बात से मैं भी अग्री करती हूँ कि इंसान नशे में कुछ भी बोल जाता है, गौरवी जी ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा। फिर वो तिरछी मुस्कुराहट के साथ आगे बोली, लेकिन अब आपको भी मेरी एक बात पर अग्री करना होगा कि नशे में इंसान वही बोलता है जो उसके दिल में चल रहा होता है। पर मेरे पास तो दिल है ही नहीं, आरव ने कंधे उचकाकर कहा। मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही बोलोगे, दिल ना सही, लेकिन मिस्टर खुराना दिमाग तो है ना, गौरवी जी ने हंसते हुए कहा। अरे दादी वो, आरव ने उन्हें समझाना चाहा, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही गौरवी ने गंभीर आवाज के साथ कहा, संभल कर मिस्टर खुराना, कोई आपके दिमाग पर कब्जा कर रहा है। गौरवी जी की बातों से आरव को इतना तो समझ आ गया था वो कल रात की बात कर रही है जहां आरव ने गलती से वो अपनी दिल की बात बोल बैठा। बना